ஓம் நம சிவாய. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், த நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் சிவானந்த லஹரி, பிரசன்டட் பாய் ஆதிகுரு சங்கராச்சாரியா ஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
தியாயே நித்யம் மகேசம் ரஜத கிரி நிபம் சாரு சந்திராவதம்சம் ரத்னாகல்பஜ்வலாங்கம் பரசுமிருகவர வேதிஹஸ்தம் பிரசன்னம் பத்மாசீனம் சமந்தாத் ஸ்துதம் அமரகணர் வ்யக்ரக்ருத்திம் வசானம் விஸ்வாத்யம் விஸ்வபந்தியம் நிகில பயஹரம் பஞ்சவக்த்ரம் த்ரிநேத்ரம் நாராயணம் பத்மபவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத் புத்ர பராசரம் ச வ்யாஸம் சுகம் கௌட பதம் மஹந்தம் கோவிந்த யோகீந்திர மதாஸ்யம் ஸ்ரீ சங்கராச்சார்ய மதாஸ்ய பத்மா பாதஞ்ச ஹஸ்தமலகஞ்ச சிஷ்யம் தந்த்ரோடகம் வார்த்திக காரமண்யான் அஸ்மத் குரும் சந்ததமானதோஸ்மி. விசுத்தானேய திரிவேதிவ்யுசே ஸ்ரேய பிராப்திநாய நம சோமாரிணே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம் சந்திரசேகர 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 பாஹி மாம் சந்திரசேகர 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 ரக்ஷமாம் சந்திரசேகர சந்திர ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ பாஹி மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ பாஹி மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ராம ராகவ ரக்ஷ மாம் ராம ராகவ ராம ராகவ ரக்ஷ மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ பாஹி மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ பாஹி மாம் கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ கிருஷ்ண கேசவ ரக்ஷ மாம் கிருஷ்ண கேசவ कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्षम चंद्रशेखर 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 पाही माम चंद्रशेखर 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 पाही माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम चंद्रशेखर चंद्र चंद्रशेखर रक्ष माम चंद्रशेखर रक्ष माम चंद्रशेखर रक्ष माम ओ ओ ओ प्रेमपुरी आश्रम आयोजित कृष्ण कुमार दहिया गीता चिंतन माला अंतर्गत आदिगुरु शंकराचार्य विरचित शिवानंद लहरी इस स्तोत्र के आधार पर लगातार 4 वर्षों से चर्चा चल रही है। तो इस बार इस 100 श्लोक का स्तोत्र की व्याख्या पूरा करने का लक्ष्य है। अभ्यास के लिए श्लोक नंबर 91 गाड़ी स्टेशन में पहुंच रही है। आद्य विद्या ऋद्गता निर्गता सिद्ध विद्या ऋद्या ऋद्गता त्वत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जम् भावे मुक्तिर्भाजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्य दुःख दुरहंकृति दुर्वचांसि सारं त्वदीय चरितं नितरां पिबन्तम् गौरी समामिह समुद्र सत्कटाक्षै कोमलकलाधरमौलौ सोमकलाधरमौलौ कोमल घनकंधरे महामहसी स्वामिनी गिरिजानाथे मामक हृदयं निरंतरं रमतां सारसना ते नयने तावेव करौ स एव कृतकृत्यः या ये यौ यो भर्गम् वदति इच्छेते सदार्चतः स्मरति। अतिमृदुलौ मम चरणौ, अतिकठिनं ते मनो भवानी स, इति विचिकित्सां संत्यज, शिव कथमासीत् गिरौ तथा वेशः। धैर्यांकुशेन निवृतं रवसा रवसादाकृष्य, भक्तिश्रृंखलया पुरहर चरणानाले, हृदय मभे मदेवं बधान चिन्यंत्रई। प्रसंग चल रहा है। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी भगवान शिव के सान्निध्य में ये सारी भाव व्यक्त कर रहे हैं। जीवन की जो कृतकृत्यता है, व्यक्ति जब जीवन की कृतकृत्यता का अनुभव करता है, भगवान को धन्यवाद दिए बिना रह नहीं सकता। भक्त भगवान को इस तरह कहते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी भगवान शिव से इस तरह कह रहे हैं, आद्य विद्या ऋद्गता निर्गता सित, विद्या ऋद्या ऋद्गता तत्प्रसाद। सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं, भावे मुक्तेर भाजनं राजमौले। इस श्लोक में संबोधन है राजमौले। भगवान शिव का नाम है राजमौली, राजमौलेश्वर। संबोधन में हे राजमौले, राजाओं के सिर मुकुट, संसार में जितने भी बड़े बड़े राजा हुए हैं, चाहे वह नरेश हों, चाहे वह देवेश हों, राजेंद्र हों, चाहे देवेंद्र हो, सबकी शोभा सिर में मुकुट नहीं है तो उनकी किसी की शोभा नहीं है। राजाओं की शोभा उनके सिर में दिव्य रत्नों से युक्त मुकुट से होती है। अभिप्राय यह है कि भगवान शिव भक्ति यदि मस्तिष्क में न हो, विचार में न हो, वो सब क्षुद्र जीवन है। और जब राजाओं की गणना होती है, चाहे देवलोक की राजाओं की गणना हो, चाहे नरलोक की राजाओं की गणना हो, सबसे ऊपर भगवान शिव महाराज है, राजमौले। मौल शब्द का अर्थ होता है मस्तिष्क, सिर, सिर मुकुट, ये राजमौली संबोधन से भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ हैं ये भाव व्यक्त कर रहे हैं संबोधन से। ये राजमौली तत्प्रसादात आपकी कृपा से तत्प्रसादात आपकी प्रसन्नता से आपकी कृपा से आद्या अविद्या हृदगता निर्गता शीत क्या मुंडक उपनिषद में एक श्रुति आती है मंत्र है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन एमे वेशा वृणुते तेन लभ्य तस्यै स आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य ये आत्मा बलहीन व्यक्ति द्वारा प्राप्त करने योग्य नहीं है। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य न लभ्य अयम आत्मा बलहीनेन न लभ्य दोनों है बलहीनेन भी प्रवचनेन भी है दो जगह अलग अलग पाठ है नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य ये भी है अयम आत्मा बहु प्रवचनेन न लभ्य प्रवचनेन न लभ्य जिस आत्मा को तुम चाह रहे हो परमात्मा को तुम चाह रहे हो हम चाह रहे हैं वो आत्मा प्रवचन के माध्यम से मिलने वाला नहीं है। न बहुना श्रुतेना जीवन भर सुनते रहने से भी वो मिलने वाला नहीं है। फिर महाराज वो मिलता कैसे है तो वहां उत्तर दिया है उपनिषद ने स्वयं उपनिषद ने उसकी उपलब्धि का माध्यम भी बता दिया है। एमे वेश वृणुते तेन लभ्य जिसने आत्मा को जैसे शास्त्र ने वर्णन किया है वह परमात्मा वो आत्मा जिसको ये चाहता है कि ये मुझे प्राप्त कर ले वृणुते ऐसा आत्मा यम वृणुते वो परमात्मा जिसका वर्ण कर लेता है जिसका वर्ण कर लेता मतलब परमात्मा ये संकल्प करता है ये व्यक्ति मेरा अनुभव करे ये व्यक्ति मुझे प्राप्त करे मेरा दर्शन करे मेरा अनुभव प्राप्त करे एमे वेश वृणुते तेन लभ्य तो उसी के द्वारा वो आत्मा उपलब्ध हो सकता है। ये बड़ा विचित्र मंत्र है वह हमें वरण करे तब हम उसको प्राप्त करें हम उसको वरण करें और हम उसको प्राप्त करें ऐसा नहीं है वो हमारा वरण करे तब हम उसको प्राप्त करें। देखो इस मंत्र का ही अर्थ है, तो उसको क्या पड़ी है कि वो हमें वरण करता फिरे। उसको क्या पड़ी है? वो हमको खोजता फिरे, हमको वरण करता फिरे, उसको क्या पड़ी? क्या हमें वरण किए बिना उसका काम रुक रहा है क्या? और शायद आप और हम तो यही मानते हैं कि महाराज हमारे बिना आपका काम कैसे चल रहा है। तो कभी कभी तो हमें ऐसे भ्रांति होती है कि मन में न होता ईश्वर के संसार की व्यवस्था सब गड़बड़ाती। ये तो हम हैं इसलिए हम सब कर रहे हैं। जबकि ये बात नहीं है, उसकी व्यवस्था अपने ढंग की है। इस अनंत अनंत जीव समूह में हमारी गिनती किस में है बोलो? इस अनंत अनंत जीव समूह में हमारी गिनती किस में है? कहां हमारी गणना होगी? फिर भी हर व्यक्ति यही समझता है कि मैं प्रथम व्यक्ति हूं गणना के क्रम में। ये अहम है। और उपनिषद का मंत्र यह है कि वह स्वीकार करे तब हमको प्राप्त हो, उसकी कृपा हो तो हमें वो प्राप्त हो। पुराणों की कथा है, बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं पुराणों में। कहते हैं ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज जी ने ऐसे मनोरंजनात्मक भाव से व्याख्या किया है। उनकी शैली बड़ा विचित्र है। कहते हैं कि एक बार जीवात्माओं को और परमात्मा दोनों के बीच में खेलने की इच्छा हुई, क्रीड़ा करें, मनोरंजन करें। तो कौन सा खेल खेलें? बोले छिपने का खेल खेलें, छुपा छुपी खेल खेलें। आप लोग खेले कि नहीं? नहीं पता नहीं क्या खेले होंगे। बच्चे लोग करते हैं ना, कुर्सी के नीचे टेबल के नीचे छुप जाते हैं। तो बोले कि ठीक है खेलते हैं। तो दो टीम हो गए, एक परमात्मा अकेला एक तरफ और सारे जीवात्मा एक तरफ। परमात्मा ने कहा कि तुम लोग सब छुप जाओ और हम अकेले खोजेंगे तुमको। जीवात्मा ने कहा कि ठीक है हम छुप जाएंगे। तो जीवात्मा छुपने लगे, अपने अपने समझ के अनुसार, अपने अपने हिसाब से सब जीवात्मा छुपे। कहां छुपेंगे भाई? जीवात्मा कहां छुपेंगे? कोई हाथी के शरीर में छुप गया, कोई चींटी के शरीर में छुप गया, कोई मक्खी के शरीर में छुप गया, कोई मच्छर के शरीर में छुप गया, कोई कॉकरोच के शरीर में छुप गया। यही तो छुपने का स्थान है। जीवात्मा छुपेगा तो कहां छुपेगा? यही सब छुपेगा। और तुम और हम कुछ समझदार थे तो इन इन शरीरों में छुप गए, है ना? बहुत से जीवात्मा थे, अपने अपने छुपने के कारण ये अलग अलग 84 लाख योनि हो गए, ये सब में छुप गए। और सब जीवों ने कहा कि महाराज अब हम अच्छी तरह छुप गए हैं, पता लगाओ कि हम कहां छुपे हैं, पता लगाओ। तो परमात्मा ने कहा